सबसे पहले छह सुर्खियां। साइबर सिक्योरिटी के वजीर क्लेयर ओ'नाइल ने साइबर मुजरिमों के खिलाफ पंच बैक करने का अज़्म किया है। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के लिए सैलाब के इंतबाहात। और अब खबरें तफसील के साथ। साइबर सिक्योरिटी मिनिस्टर क्लेयर ओ'नाइल का कहना है कि मेडी बैंक के हालिया डेटा हैक की रोशनी में ऑस्ट्रेलिया साइबर मुजरिमों पर पंच बैक कर रहा है। वफाकी हुकूमत ने एक हाई टेक पुलिसिंग ऑपरेशन शुरू किया है जो ऑस्ट्रेलियंस की निजी मालूमात चुराने वाले हैकर्स के नेटवर्क्स को निशाना बनाता है, जिसकी क़यादत फेडरल पुलिस और ऑस्ट्रेलियन सिग्नल्स डायरेक्टोरेट एक नए मुस्तकिल इंतज़ाम के तहत कर रहे हैं। मिनिस्टर ओ'नाइल का कहना है कि हुकाम को जुराइम की इस शक्ल के लिए अपनी पूरी क़ुव्वत इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को साइबर हमलों की मुसलसल लहर का सामना है। ABC से बात करते हुए उनका कहना था कि साइबर मुजरिमों को सलाखों के पीछे डालना एक मुश्किल और वक्त तलब ऑपरेशन है।
And we've got people who are essentially being harbored by foreign governments and allowed to continue this type of activity. But what we can do is two really important things. The first thing is hunt these people down and disrupt their operations. It weakens these groups if governments like ours collaborate with the FBI and other police forces and intelligence agencies around the world. But the second important thing that we need to do is stand up and say that Australia is not going to be a soft target for this sort of thing. And if people come after our citizens,
آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے کمبوڈیا میں ایک گالا ڈنر کے موقع پر چینی وزیر اعظم لی کی چیانگ سے مختصر بات کی ہے۔ چین کے صدر شی جنگ پینگ کے ساتھ ضابطہ دو طرفہ ملاقات کے لیے یہ باقاعدہ کوشش سمجھی جا سکتی ہے۔ اینتھنی البنیزے کمبوڈیا میں آسیان اور مشرقی ایشیا کے سربراہی اجلاسوں کے لیے عالمی رہنماؤں کے ساتھ عشائیے میں شریک تھے، جہاں وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مختصر گفتگو کی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے 50 سال مکمل ہونے پر تبادلہ خیال کیا۔ آسٹریلیا اور چینی رہنماؤں کے درمیان 6 سال سے باضابطہ دو طرفہ ملاقات نہیں ہوئی ہے، تاہم آسٹریلیا کا اندازہ ہے کہ چین کی تجارتی پابندیوں سے ملک کو تقریباً $20 بلین کا نقصان ہو رہا ہے، جبکہ وزیر اعظم نے بارہا کہا ہے کہ وہ چینی صدر کے ساتھ بات چیت کا خیر مقدم کریں گے۔ پریمیئر لی ہی وہ چینی نمائندے تھے جنہوں نے مئی میں منتخب ہونے کے بعد اینتھنی البنیزے کو مبارکباد کا خط بھیجا تھا۔ گزشتہ رات پہلی بار ان سے ذاتی طور پر ملاقات ہوئی۔ ادھر نیو ساؤتھ ویلز کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ حالیہ جاری سیلاب کی ہنگامی صورتحال پر اپنے رد عمل کو مزید مضبوط کرنے کے لیے بیرونی ممالک سے تعاون کی تلاش کرے گی۔ ریاست کے کچھ علاقوں میں آج 13 نومبر کو 150 ملی میٹر تک بارش ہونے کا امکان ہے۔ سب سے زیادہ تشویش کے علاقے واگا، البری، یاسینگ اور مرے ندی کے نظام کے ساتھ تمام قصبے ہیں۔ ایمرجنسی سروسز کے وزیر اسٹیف کک کا کہنا ہے کہ بیرونی ملک سے امداد پر غور کیا جا رہا ہے۔
We'll now turn our attention to reaching out internationally and seeing what support we can ask for from other countries who aren't in the prolonged flooding event that we are experiencing.
وکٹوریہ میں بھی شدید موسم کی توقع ہے، کیونکہ آج دوپہر سے بارش کا ایک سسٹم آگے بڑھ رہا ہے۔ ریاست کے بیشتر حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے، جو پہلے سے دباؤ کا شکار ندیوں پر مزید دباؤ ڈالے گی۔ وکٹورین محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ شمالی اور شمال وسطی اضلاع میں وبائی طوفان کے زیر اثر دمے کا زیادہ خطرہ ہے۔ ریاست میں دیگر جگہوں پر درمیانے درجے کا خطرہ موجود ہے۔ اور اب کچھ خبریں بین الاقوامی افق سے۔ امریکہ کے موسمیاتی تغیر کے ایلچی جان کیری نے COP27 کو بتایا کہ ان کا ملک کاربن کے اخراج سے لڑنے کے لیے راستے دکھا رہا ہے۔ جناب کیری کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے ثابت کیا ہے کہ امریکہ موسمیاتی تبدیلی پر کاروائی کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
The President outlined how the Inflation Reduction Act not only puts the United States on track to meet our ambitious 2030 target, but will also help, and importantly, especially at a meeting like this, will help other countries to be able to do what they need to do and to drive down the cost of clean technologies and to help make certain that those new clean technologies get distributed to the world.
उधर मुत्तहदा अरब इमारात में ट्रैफिक जुर्मानों पर 50% रियायत का ऐलान कर दिया गया है। इमारती मीडिया के मुताबिक रियासत अजमान की पुलिस ने UAE में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर होने वाले जुर्मानों में 50% तक रियायत देने का ऐलान किया है। अजमान पुलिस के सरबराह मेजर जनरल शेख सुल्तान बिन अब्दुल्ला नईमी का कहना है कि जुर्मानों में रियायत का आगाज 21 नवम्बर 2022 से होगा और ये सहूलत 6 जनवरी 2023 तक जारी रहेगी। उनका कहना था कि इस कमी का इतलाक 11 नवंबर से पहले की जाने वाली तमाम ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर होगा। पुलिस ने संगीन खिलाफ वर्जियों पर कोई रियायत न देने का फैसला किया है, जिसमें खतरनाक ड्राइविंग जिससे अमन अमान का खतरा और जानी नुकसान का अंदेशा हो, हैवी ट्रैफिक के सिग्नल तोड़ना और इस मकाम पर ट्रैफिक का ओवरटेक करना जैसे जराइम शामिल हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने दारुल हुकूमत काबुल के तमाम पार्कों में खवातीन के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है, जिससे खवातीन घर से बाहर की जिंदगी से मजीद दूर हो गई है। तालिबान हुकूमत की वजारत अम्र बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर के तर्जमान ने BBC से बात करते हुए कहा कि काबुल के पार्कों की इंतजामिया को बता दिया गया है कि वो औरतों को पार्कों में आने की इजाजत ना दें। तालिबान के मुताबिक शहर के पार्कों में इस्लामी कानून पर अमल नहीं किया जा रहा। अगस्त 2021 में जब से तालिबान ने इख्तदार हाथ में लिया है, मुल्क में खवातीन के हकूक और उनकी आजादी पर शदीद पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कानून के मुताबिक खवातीन को हफ्ते के 3 दिन पार्कों में आने की इजाजत दी गई थी, जबकि हफ्ते के दीगर 4 दिन मर्दों के लिए मखसूस कर दिए गए थे, लेकिन पार्कों की इंतजामिया को दी जाने वाली नई हिदायत के मुताबिक अब खवातीन को मर्द रिश्तेदारों के हमराह भी पार्क में आने की इजाज़त नहीं होगी। और अब कुछ खबरें पाकिस्तान से। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मुलतवी कर दिया गया है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अब इंडोनेशिया के शहर बाली जाएंगे। वो इंडोनेशिया में G20 समिट में शिरकत करेंगे। वजारत खारजा जराय का कहना है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की नई तारीखों के लिए मशावरत जारी है, जिसे जैसे ही शेड्यूल जारी होगा तो फिर हतमी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। दफ्तर खारजा ने सऊदी वली अहद का दौरा मंसूख होने की तस्दीक कर दी है। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान मुलतवी होने की तस्दीक करते हुए कहा कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 21 नवंबर को एशिया का दौरा करना था और फिर पाकिस्तान के दौरे पर पहुँचना था। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि मुल्क में इस्तेहकाम तकरीरों से नहीं इलेक्शन से आना है। जमान पार्क लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ 5 दिन से लंदन में बैठे हैं, ये लोग तकरीरों को मुतनाज़ा बना रहे हैं। उनका कहना था कि जैसा लोग कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। मुल्क में इस्तेहकाम तकरीरों से नहीं इलेक्शन से आता है। और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से, जहां आज सबकी नजरें टिकी हैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। T20 वर्ल्ड कप का आखिरी मौका आज पाकिस्तान और बरतानिया की टीम्स के मबाइन खेला जाएगा। शायकीन क्रिकेट के लिए ये मैच कई हवालों से दिलचस्पी का हामिल है, जबकि दोनों ही टीमों का कहना है कि वो अपने फैंस को भरपूर एंटरटेनमेंट फराहम करेंगी। और अब मौसम की सूरत हाल, जहां अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो कल बरोज पीर मुख्तलिफ शहरों में मौसम कुछ यूं रहेगा। सिडनी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 और कम से कम 15, मेलबर्न बारिश के साथ 18 और 8, कैनबरा बारिश के साथ 16 और 8, ब्रिस्बेन 31 और 18, पर्थ 25 और 12, एडिलेड बारिश के साथ 16 और 9, डार्विन बारिश के साथ 33 और 26, होबार्ट बारिश के साथ 16 और 7, जबकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 और कम से कम 9, कराची 32 और 21, लाहौर 22 और 13, पिशावर 17 और 11, कोयटा 14 और 2, जबकि भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 और कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और अब करेंसी रेट्स, जहां आज एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर बराबर है 147.34 पाकिस्तानी रुपए, 0.67 अमरीकी डॉलर, 53.98 भारतीय रुपए के। सामईन, आप सुन रहे थे SBS उर्दू पर आज की खबरें।